मोक्षमार्थ सिनीतारं भीतारं कर्मभूवृतां ज्ञातारं विश्वतत्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। ये उक्त क्षयोपशमिको, यह क्षय को भावो नवविध उद्दिष्टस तस्य भेद स्वरूप प्रतिपादनार्थ माह। जो क्षय भाव नौ प्रकार का कहा जा चुका है उसके भेदों का स्वरूप प्रतिपादित करने के लिए आचार्य कहते हैं, ज्ञान दर्शन दान लाभ भोग उपभोग वीर्याणि च। ज्ञान दर्शन दान लाभ भोग उपभोग और वीर्य कितने हुए? नौ क्षय भाव, अभी यहां पर सात बताए। तो च शब्द जो है ना अंत में, वो जो पूर्व सूत्र में दो आए थे सम्यक तु चारित्र, उनको च शब्द से यहां पर और जोड़ लेना तो सात और दो नौ क्षय भाव हो जाएंगे। जैसे वहां पर औपशमिक सम्यक था, औपशमिक चारित्र था, यहां पर क्षायिक हो जाएगा। तो क्षायिक ज्ञान, क्षायिक दर्शन, क्षायिक दान, क्षायिक लाभ, क्षायिक भोग, क्षायिक उपभोग, क्षायिक वीर, क्षायिक सम्यक और क्षायिक चारित्र, ऐसे नौ क्षायिक भाव होते हैं। ज्ञानावरण से अत्यंत क्षयात केवल ज्ञानम क्षायिकम तथा केवल दर्शनम। ज्ञानावरण के पूर्ण क्षय से केवल ज्ञान क्षायिक ज्ञान होता है, वैसे ज्ञान दर्शनावरण के पूर्ण क्षय से केवल दर्शन क्षायिक होता है। दानांतरायस्य अत्यंत क्षयात दानांतराय कर्म के पूर्ण क्षय से अनंत प्राणी ग्रहानुग्रह कर्म क्षायिकम अभयदानम। अनंत प्राणियों के समूह का उपकार करने वाला है, क्षायिक अभयदान होता है। यानी भगवान जब अभयदान करते हैं तो उस अभयदान में सब सुरक्षित हो जाते हैं। ये क्षायिक लब्धि केवल भगवान के पास होती है और ये क्षायिक दान नाम की जो लब्धि है उसमें अभयदान कह रहे हैं यहां पर, तो उस अभयदान से सब जीवों की रक्षा होती है। और फिर इसी क्षायिक दान के कारण भगवान दाता कहलाते हैं। और वो क्या क्या दे सकते हैं इस विषय में अन्य ग्रंथों में विस्तार से वर्णन आते हैं। जैसे बोध पाउड की 24वीं गाथा में बताते हैं कि अरंत भगवान बहुत कुछ देने में समर्थ है। सहस्राम सूत्र में उनको महादानो, महान दानी कहा है आदिनाथ भगवान को। वैसे वर प्रदर, उत्कृष्ट प्रदान करने वाले, वर यानी श्रेष्ठ, उसको प्रदान करने वाले, श्रेष्ठ के प्रदाता। फिर अभीष्टत, जो अभीष्ट है अपने लिए इष्ट है उसके प्रदायक, उसके प्रदाता। और इसी तरह चिंतामणि, कामधेनु, ये सारे नाम भी भगवान के आते हैं। तो ये सब देने में प्रसिद्ध है। चिंतामणि चिंतित वस्तु दाने, चिंतित वस्तु प्रदान करने में प्रसिद्ध है चिंतामणि। कामधेनु, कामना करो और वो चीज मिल जाती है उस धेनु से। वैसे कल्प वृक्ष होता है, आप जो याचना करो तो कल्प वृक्ष से वो वस्तु प्राप्त हो जाती है। तो भगवान के लिए सारे विशेषण दिए हैं, अर्थात वो दाताओं में दाता है, सबसे बड़े दाता है। फिर लाभांतरायस्याशीषस्य निरासात परित्यक्त कवलाहार क्रियाणां कैवलिनां यतः शरीर बलाधान हेतु बलाधान हेतवोन्य मनुजा साधारणाः परम शुभाः सूक्ष्मा अनंताः प्रतिसमयं पुद्गलाः संबंधमुपयान्ति सक्षायिको लाभ। पूर्णतः लाभांतराय कर्म के क्षय से छूट गया है कवलाहार जिनका, उस क्रिया से रहित जो केवली हैं उनके लिए, क्योंकि शरीर को बल प्रदान करने में हेतुभूत अन्य मनुष्यों के लिए अप्राप्य अथवा उनके लिए साधारण नहीं है, ऐसे परम शुभ सूक्ष्म अनंत उद्गल प्रति समय संबंध को प्राप्त होते हैं। यानी केवल ज्ञान होने के बाद भोजन किए बिना भी ऐसे परमाणु उनके शरीर में आते रहते हैं जिससे वो शरीर आयु पर्यंत स्थिर रहता है, उसमें कोई म्लानता नहीं आती। तो ये जो लाभ हो रहा है उनको, उन परमाणुओं का, वो क्षायिक लाभ से हो रहा है। तो इसलिए उनको शरीर स्थिर रखने के लिए भोजन की कोई आवश्यकता नहीं है, उनको क्षायिक लाभ से ही शरीर के योग्य परमाणुओं का लाभ हो जाता है। कृत्स्नस्य भोगांतरायस्यात्यन्ताभावात् आविर्भूतोतिशयवान् अनन्तो भोगः क्षायिकः। संपूर्ण भोगांतराय के अत्यंत क्षय से, अत्यंत अभाव होने से उत्पन्न होता है अतिशयवान अनंत भोग, यतः जिससे कुसुम वृष्टि आदि विशेषा प्रादुर्भवन्ति, पुष्प वृष्टि आदि प्रातिहार्य उनके होते हैं। तो ऐसी पुष्प वृष्टि कहीं संसार में अन्यत्र नहीं हो सकती, इतनी पुष्प वृष्टि होती है भगवान के सम्मुख शरण में कि अष्टपौर की टीका में भी लिखा है कि वहां प्रवेश करने वाले जो उस काल के मनुष्य, जैसे आदिनाथ भगवान के समय 500 धनुष के मनुष्य थे, तो उनके घुटनों तक फूल ही फूल भरे रहते हैं पूरे समोसरण के अंदर, इतनी पुष्प वृष्टि होती है, घुटनों तक फूल भरे होते हैं, जैसे मुंबई में पानी भरा रहता है बरसात में। तो भरे रहते हैं फूल समोसरण में, वहां सभाभूमि पर जब मुनिराज आते हैं ना तो फूल हट जाते हैं, ऐसा है। तो पुष्प वृष्टि आदिक उनको इससे प्राप्त होते हैं क्षायिक भोग से। और निरवशेषस्य उपभोगांतरायस्य प्रलयात् प्रादुर्भूतो नंत उपभोग क्षायिकः। संपूर्ण उपभोगांतराय के प्रलय से अर्थात विनाश से उत्पन्न हुआ अनंत भोग होता है, वो भी क्षायिक है, यतः जिससे सिंहासन चामर छत्र त्रयादय भूतय, सिंहासन चामर तीन छत्र आदि विभूतियां उस उपभोगांतराय के क्षय से होती है। वीर्यांतरायस्य कर्मण अत्यंत क्षयाद आविर्भूतम अनंत वीर्यम क्षायिकम्। वीर्यांतराय के कर्म के अत्यंत क्षय से उत्पन्न हुआ अनंत वीर्य क्षायिक है। पूर्वोक्तानां सप्तानां प्रकृतीनां अत्यंत क्षयात् क्षायिकम् सम्यक्तम्। और पहले कही हुई जो अनंतानुबंधी क्रोध मान मायलो मिथ्यात्व सम्यक मिथ्यात्व सम्यक प्रकृति, इन सात प्रकृतियों के क्षय से उनके क्षय सम्यक होता है, क्षय उनने पहले किए हैं, सात प्रकृतियों का क्षय पहले किया जाता है, पर वो भी लब्धि उनके पास होती है, इसलिए उसकी गिनती तो करेंगे और फिर उसका वर्णन करेंगे। इतना है कि उस लब्धि का बल बढ़ जाता है, केवल ज्ञान होने के बाद क्षायिक सम्यक्त सबसे अधिक शक्तिमान होता है। और यहां पर संसार अवस्था में जहां क्षायिक सम्यक दर्शन की किसी ने प्राप्ति की है, तो असंयमी अवस्था में वो जघन्य होता है, उसकी शक्ति अल्प होती है। श्रद्धांत तो अटूट होता है लेकिन उसकी शक्ति अल्प होती है। चारित्रम अपि तथा, उसी तरह चारित्र भी होता है। चारित्रमों के पूर्ण क्षय से उत्पन्न होने वाला चारित्र केवल ही भगवान के पास होता है, वो क्षायिक चारित्र। यदि क्षायिक दानादि भाव कृतम अभय दानादि सिद्धेश भी तत्प्रसंग, बोले कि आप कह रहे हैं कि क्षायिक दान आदि भावों के द्वारा अभय दान आदि किया जाता है, फिर सिद्धों में भी उनका प्रसंग आ जाएगा। ये जो चीजें आपने बताई अरहंतों में, पुष्प वृष्टि हो रही है, सिंहासन आदि हो रहे हैं और अभयदान हो रहा है, तो फिर ये क्षय तो हो ही चुका है कर्म का, और उस क्षय से ये सारी वस्तुएं प्राप्त हो रही है, तो फिर सिद्धों में भी क्षय तो बना हुआ है, तो वहां पर भी ये चीजें होनी चाहिए। नहीं, फिर दोष आचार्य बोलते हैं कि ऐसा दोष नहीं समझना। शरीर नाम कर्म, तीर्थकर नाम कर्म उदय, तीर्थकर नाम कर्म उदया आदि, शरीर नाम तीर्थकर नाम कर्म उदयाद्यपेक्षत्वात् तेषां तदभावे तदप्रसंगः। ये जो शक्तियां हैं ये इस रूप में पुष्प वृष्टि सिंहासन आदि और अनंत दान में सब जीवों को अभयदान देने में तब समर्थ होती है जब साथ में नाम कर्म आदि का सहयोग हो, और सिद्धों में कोई कर्म बचता ही नहीं, इसलिए वहां पर वो शक्ति उनके पास रह जाती। और उसको बताते हैं कि कैसे रहती है उस सिद्धों के पास, कथम तरी तेषां सिद्धेषु वृत्ति, तो उन शक्तियों की सिद्धों में कैसे परिणति होती है। तो आचार्य कहते हैं परमानंत वीर्याव्यावाद सुख रूपेण तेषां तत्र वृत्ति। परम अनंत वीर्य और अव्यावाद सुख के रूप से ही ये सारी शक्तियां वहां परिणत हो जाती हैं सिद्धों में। केवल ज्ञान रूपेण अनंत वीर्य वृत्तिवत, जैसे केवल ज्ञान रूप से अनंत वीर्य की वृत्ति होती है, वैसे ही ये सारी जो लब्धियां हैं वो सिद्धों में उस रूप से हो जाती है, अव्यावाद सुख के रूप में परिणत हो जाती है। अब क्षायिक भावों का ये वर्णन हुआ। अब यह उक्त क्षायोपिशमिको भावोष्ट, क्षायोपिशमिको भावोष्टादश विकल्पस तद भेद निरूपणार्थमाह। जो क्षायोपिशमिक भाव 18 प्रकार का कहा गया है, उसके भेदों का अर्थात 18 भेदों के नाम आदि का वर्णन करने के लिए आगामी सूत्र है। ज्ञान अज्ञान दर्शन लब्धयश चतुष चतुष ज्ञान अज्ञान दर्शन लब्धयश चतुष त्रि त्रि पंच भेदाः सम्यक् चारित्र संयमासंयमाश्च। ज्ञान तो क्षय क्षणिक ज्ञान जो होते हैं वो चार सम्यक और तीन मिथ्य, सात क्षयोपशमिक ज्ञान होते हैं। पर अभी यहां पर ज्ञान जो है वो सम्यक ज्ञान के रूप में अगर लिया जाता है तो फिर उसकी संख्या केवल चार बनती है। फिर अज्ञान जो होते हैं वो मिथ्या ज्ञान है, तो इसलिए चतुष के बाद में त्रि दिए हैं, तो वो तीन अलग है। तो ज्ञानाज्ञान ज्ञान में मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन परिज्ञान, क्षय क्षमिक है, और अज्ञान में कुमति, कुश्रुत और कदावधि, विभंगावधि, ये तीन क्षय भ्रमित। दर्शन त्रि, तीन दर्शन है, केवल दर्शन को छोड़कर बाकी तीन दर्शन क्षय उपशमिक है। कौन से तीन दर्शन? अचक्षुर दर्शन, चक्षुर दर्शन और अवधि दर्शन, ये तीन क्षय उपशमिक है। लब्ध है जो अंतराय कर्म के क्षयोपशम होने वाली जो लब्धियां हैं वो पांच हैं। दान लब्धि, लाभ लब्धि, भोग लब्धि, उपलोग उपभोग लब्धि और वीर्य लब्धि। ये संसारी जीवों में भी होती है पर यहाँ पर क्षयोपशमिक होती है, भगवान में क्षायिक होती है। फिर सम्यक्त्व, क्षयोपशमिक सम्यक्त्व होता है। चारित्र, क्षयोपशमिक चारित्र भी होता है। और संयमा संयमाश्च, पंचम गुण स्थान जो होता है उसको भेदता विरत भी कहते हैं, संयमा संयम भी कहते हैं, तो वो भी क्षय उपशमिक है। अब औदयिक भाव जो है उनके नाम बतलाते हैं। गति कषाय लिंग मिथ्या दर्शन ज्ञान असंयता सिद्ध देशिया चतुश्चतुस्थ एक षड भेदा। गति चतुः, चार गतियां हैं। कषाय चतुः, चार कषाय हैं। लिंग त्रि, तीन लिंग है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसक लिंग। पर यहां पर जो भावात्मक लिंग है उसको लेना, शारीरिक जो स्त्री पुरुष के आकार है वो न लेकर के अंतरंग जो भाव होते हैं मोहिनी के उदय से वो लिंग लेना है औदयिक भाव में। फिर मिथ्या दर्शन, मिथ्या दर्शन एक है। फिर अज्ञान वो भी एक है, जितना ज्ञान पर आवरण है उतना अज्ञान है। वहां क्षयोपशमिक भाव में जो अज्ञान था वो क्षयोपशमिक ज्ञान ही मिथ्या ज्ञान रूप होने से अज्ञान था, यानी वहां तो जानने की प्रक्रिया थी लेकिन मिथ्यात्व के कारण उसको अज्ञान कहा था। पर यहां क्या, कौन सा अज्ञान है? यहां पर औदयिक अज्ञान है, ज्ञानावरण का उदय है तो उदय से अपन जितना नहीं जान पा रहे हैं वो वाला अज्ञान औदयिक है। तो असंयत भाव भी औदयिक है, चौथे गुण स्थान तक के रहता है असंयत भाव। चारित्र मोहिनी कर्म के सर्वघाती स्पर्धकों के उदय से असंयत भाव चौथे गुण स्थान तक पाया जाता है। तो ये असंयत भाव कौन से गुण की पर्याय है? चारित्र गुण की। तो असिद्ध भाव, असिद्ध यानी जब तक सिद्ध नहीं है तब तक असिद्ध, एक भी कर्म का उदय हो तो असिद्ध रहना ही है, असिद्ध का संसारी, ये भी एक औदयिक भाव है। सामान्य कर्म सामान्य के उदय से असिद्ध रहता ही है जीव, ये भी एक औदयिक भाव है। और लेशा षट भेदा, छह है भेद जिनके ऐसी लेशाएं भी होती है। और वो जो छह भेद है उनमें कृष्ण नील का पुत्र पीत पद और शुक्ल, ऐसी छह लेशाएं होती, उनका वर्णन अभी प्रातःकाल किया जाएगा ऐसा प्रोफेसर साहब ने निवेदन किया है, तो प्रातः काल में देंगे। फिर पारिणामिक भाव जिसमें कर्मों का कोई लेना देना नहीं है, कर्मों से कोई संबंध नहीं है, ऐसा जो जीव का भाव है उसका विवरण करते हुए आचार्य कहते हैं कि उसके तीन भेद। जीव भव्या भव्यत्वानि च, तो अब प्रत्यय जो है वो तीनों में लगाना है, जीवत्व भव्यत्व और अभव्यत्व, और बहुवचन का प्रयोग किया है। तो ये तीन भाव पारिणामिक होते हैं। अब इसमें जो जीवत्व है, व्यवहार जीवत्व निश्चय जीवत्व, ऐसे दो प्रकार का होता है। तो व्यवहार जीवत्व जो होता है वो 10 प्राण रूप होता है, 10 प्राणों से जो जीता है, जी चुका है और जिएगा उसको जीव कहते हैं। लेकिन निश्चय जीवत जीव का जो जीवपना है वो निश्चय जीवित है। तो सम्यक दर्शन आदि पर्यायों से जो भविष्य में परिणत होगा उसको भव्य कहते हैं, यानी मोक्ष तक के, और उससे विपरीत अभव्य है। तीनों भाव जीव के पारिणामिक भाव है। तो यहां पर किसी का प्रश्न है कि सभी जीवों में सहज रूप से पाए जाने वाले अस्तित्व, नित्यत्व, प्रदेशगत्व आदि भावों को भी पारिणामिक भावों में गिनना चाहिए था। तो आचार्य बोले कि नहीं गिनना चाहिए था, क्योंकि 6 शब्द में गिन ही चुके हैं। इसलिए इसमें क्या जीव भगवा भगतवाणी च, उस च में उन सब पारिणामिक भावों को ले लिया। स्वाभाविक रूप से जो द्रव्य में पाए जाते हैं वो पारिणामिक भाव, उनको ले लिया। फिर जीव की पहचान क्या है? ये जीवाधिकार तो चल ही रहा है, जीव पदार्थ का वर्णन इस अध्याय में, तो इसकी पहचान बताइए। आचार्य कहते हैं उपयोग लक्षण उभय निमित्त वशात, यानी अंतरंग निमित्त और बहिरंग निमित्त। अंतरंग निमित्त जो है वो कर्मों के क्षयोक्षम से संबंध रखने वाला है, और बहिरंग निमित्त जो है वो इंद्रियादिक का आलंबन है। इनके माध्यम से जो जानने और देखने की परिणति होती है, चेतना का अनुकरण करने वाला जो भाव होता है उसका नाम उपयोग है। तो उससे बंधी हुई आत्मा भी पकड़ में आ जाती है। जैसे सोने या चांदी मिला दी जाए तो बंध की अपेक्षा से जो दोनों घुल मिल जाते हैं, लेकिन तो भी उनका अंतर पकड़ में आ जाता है। चांदी सफेद होती है, सोना पीला होता है। उसी तरह जीव और अजीव में जिसके पास चेतना होती है, जिसके पास जानने देखने की परिणति होती है, वो जीव ही पकड़ में आता है। उसके भेद प्रदर्शित करने के लिए आचार्य कहते हैं सब विदोष्ट चतुर्भेद है, उसके दो भेद हैं। फिर वो दो में से पहले के 8 भेद और दूसरे के 4 भेद हैं। दो भेद कौन से हैं उपयोग के? पहला ज्ञानोपयोग है, दूसरा दर्शन उपयोग है। तो ज्ञानोपयोग के 8 भेद हैं। कौन से 8 भेद हैं? 5 सम्यक ज्ञान और 3 मिथ्या ज्ञान। ये सब ज्ञान उपयोग में आते हैं। और फिर दर्शन उपयोग के 4 भेद कौन से? चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन, ऐसे भेद बनते हैं। फिर इसके बाद आचार्य कहते हैं ये जीव कितने प्रकार के होते हैं? आचार्य कहते हैं संसारिणो मुक्ताश्च, संसारी जीव होते हैं और मुक्ति जीव होते हैं, दो प्रकार के जीव होते हैं। फिर संसार क्या है? और मुक्ति क्या है उसका वर्णन आगामी सत्र में करते हैं। आज इतने ही रखते हैं।